अनेक चित्त विकार का मोह जाल समाता कि जो भोगी व्यक्ति है, जो जीव है, उसका मन अनेक वस्तुओं में भागता है, अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में रहती है।
खेलना तो जाने दो, खेलना बात
अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में रहती है और इन इच्छाओं के मोह में, मोह रूपी जाल में फंस जाता है। मोह जाल समाधिता उसमें पूरी तरह से फंस जाता है। हमने एक बार बात की थी रेशम के कीड़े की तरह, है ना, मोह जाल समाधिता। प्रसक्तः काम भोगेशु, और काम वासना में इतना आसक्त हो जाता है उसका मन कि मृत्यु कब निकट आ जाती है पता ही नहीं चलता। और क्या होता है, पतंती नरक के अशुचो। और क्योंकि काम वासना में अंधा है इसलिए वो,
थैंक यू,
काम वासना में अंधा है इसलिए अनेक प्रकार के अशुचि वाले बुरे, खराब, भयानक नरकों में गिर जाता है, पतंति गिर जाता है। इच्छा नहीं है जाने की, फिर भी जबरदस्ती अपने बुरे कर्मों के फल स्वरूप, अपने बुरे कर्मों के आत्मकृतम विपाकम, जो खुद बुरे कर्म किए उनके फल स्वरूप गुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम, गुंजान भोगने पड़ते हैं, गुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम। ब्रह्मा जी कहते हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय गुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम, भोगने पड़ते हैं। क्यों भोगने पड़ते हैं? प्रसक्ता काम भोगेशु, काम वासना इतनी प्रबल है कि भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विवेकी है, जो व्यक्ति समझदार है, उसको भी काम वासना अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और जो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां वैसे ही अनियंत्रित हैं, अजितेंद्रिय आत्मवान अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां पहले से ही उसके काबू में नहीं है, उसका तो कहना ही क्या। पशु के समान जीवन व्यतीत करता है और अगला जन्म भी उसको पशु समान ही मिलता है। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार तरह के काम में जुटा रहता है, चार तरह के। एतद पशु नाम, एतद क्या है कि पशुओं के समान इसमें मनुष्य जुटा रहता है। आहार निद्रा, आहार खाने पीने में, निद्रा सोने में, भय अपनी रक्षा करने में, और मैथुन सेक्स करने में। आहार निद्रा भय मैथुन समान्यम पशु भी नारायण, ये तो पशु भी कर रहे हैं। एतत समान्यम पशु भी नारायण, पशु भी कर रहे हैं, तो पशु और मनुष्य में भेद ही क्या है। कुत्ता भी खा रहा है, कुत्ता भी अपनी रक्षा कर रहा है, कुत्ता भी सो रहा है, कुत्ता भी बच्चे पैदा कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो फर्क ही क्या है। फर्क है धर्म विशेषो कि जो धर्म है वो फर्क है। धर्म जो है वो मनुष्य और पशु में फर्क बनाता है। तो जिसमें ये धर्म नहीं है, धर्म ही नहीं ना पशु भी समान है। जो धर्महीन व्यक्ति है वो पशु के समान है। जिस प्रकार पशु को उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती काम करवाया जाता है, उसकी इच्छा नहीं है, बैल की इच्छा नहीं है कोल्हू में झूमने के लिए, लेकिन क्या उसके पास चॉइस है, क्या उसके पास विकल्प है? उसके पास विकल्प नहीं है, जबरदस्ती उसको जोत दिया जाता है कोल्हू के अंदर, जबरदस्ती जोत दिया जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में भगवान ने प्रश्न पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं सदा चित्तम समान सत्तम, कि जो चित्त है जंतोर विषय गोचरे, कि जो प्राणी है जीव है उसका जो चित्त है उसका जो मन है वो हमेशा इंद्रिय भोग में जुटा रहता है, हमेशा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता रहता है। किस प्रकार स्पर्श गंध स्वाद शब्द दृश्य ये पांच तरह के भोग्य पदार्थ मिलते रहे जिससे उसकी पांच इंद्रियों को और उनके स्वामी मन को सुख मिलता है। किस प्रकार ये जतन चलता ही रहे। और भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी को, यदि ये जो आसक्ति है, जो मन जो इंद्र तृप्ति के विषयों में आसक्त है, यदि ये आसक्ति यदि नारायण अभी एवं, यदि ये आसक्ति नारायण अर्थात कृष्ण में निवेशित कर दे तो कोणा मुझे बंधनार्थ, तो कौन है जो बंधन से छूट नहीं जाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो बंधन से छूट नहीं सकता? हम लोग सोचते हैं कि हमें माया में जकड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। माया ने हमें जकड़ा नहीं हुआ, हमने माया को जकड़ा, हम ही माया के इंद्रजाल में अपने आप को जबरदस्ती गिरा देते हैं और उसमें बुरी तरह से उलझ जाते हैं। माया जो जाल है वो मकड़ी के जाले की तरह है। मकड़ी जब अपना जाला ढूंढती है तो दूर से जो मच्छर है उसको वो जाल जो है बहुत आराम से बिस्तर की तरह के वो देखता है कि हवा में हल्का हल्का झूल रहा है ये जाल, हल्का हल्का एक बहुत ही महीन जो है एक बिस्तर मुझे आमंत्रित कर रहा है। तो मच्छर जबरदस्ती खींचा चला जाता है सुख की तलाश, और जैसे ही उसको छूता है उस जाल को वैसे ही उसमें फंस जाता है, और जितनी कोशिश करता है उससे निकलने की और भी ज्यादा उलझ जाता है, जितनी कोशिश करता है उतना ही उलझ जाता है, और थोड़ी देर में बकरी आकर उसको खाने देती है। जब तक हमारा मन आसक्त रहेगा इंद्र तृप्ति के विषयों में, आप सभी चेक कर लो अपने अपने फोन, कोई बुराई नहीं है कहना मानना नहीं है, जरूरी नहीं है कि फोन बजने पर ही आप लोग नजरें बचाकर फोन को कौन है ये आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है? ये सभी व्यास देव जी को प्रार्थना करनी पड़ेगी मोबाइल पुराण के लिए और लिखिए कि क्या क्या संकट है इस मोबाइल पुराण मोबाइल के लिए। और पहले तो धनवान लोगों के पास था, फिर धीरे धीरे रिक्शा चालकों के पास भी आ गया, सब्जी वालों के पास, और अब तो 250 रुपए का कमा गया। बच्चे भी ले लेंगे अपने पॉकेट मनी से, नहीं अब स्पेशल माँ बाप से स्पेशल पैसे लेने की जरूरत नहीं। जो थोड़ी बहुत कॉपी में ध्यान रखता था पढ़ाई में बच्चों का, वो भी लोग फोन पर बात करते हैं सब्जी क्या बनाई है। आज मेरे बाहर कान में दर्द हो रहा है, बातें करने वाले आज पानी नहीं आया था, तो वो जिसको बता रहा है वो क्या कर नहीं आया। कोई हम सब में से कोई भी कोई मोबाइल फोन पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के तो फॉर्मूला किसी को भेज नहीं सकता, आता ही ज्यादा से ज्यादा क्या करने के लिए मोबाइल पे अपने रोजमर्रा के दुर्दर्द बांट लें। So, जितना व्यक्ति आसक्त होगा भोग विष्णु से इस संसार से, तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि अगर वही आसक्ति मुझ में नारायण में कृष्ण में अगर निवेशित कर दी तो कौन सा बंधन है जो तुम्हें बांध सकता है। लेकिन हम लोग खुद ही अपने आप को बंधन में बांधते रहते हैं और हमारा मन, और ये बंधन में भी हम क्या बांधते हैं बचपन से देखते आ रहे हैं, जो माँ बाप कर रहे हैं जो बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं हम बिना सोचे समझे वही करना शुरू कर देते हैं, है ना, बिना सोचे समझे वो कर रहे हैं ठीक ही होगा तो हम भी कर लेते हैं, तो जो उनका परिणाम हुआ उनका हर्षण हुआ वो हमारा भी हर्षण हो जाएगा। एक लड़का था वो उसके मन में सैनिक बनने का बड़ा चाव था, मैं बॉर्डर पे जाऊंगा लड़ूंगा। उसके घर वालों ने कहा नहीं नहीं प्राण खतरा है वहां पर मत जाओ, नहीं मुझे जाना है। तो किसी और मध्यस्थ के पास ले गए उसको, बच्चे कहाँ मारते, उसको बोला आप समझाओ इसको, ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पे जाना है कितना वहां पर खतरा होता है, इसको हम लोग घर पर ले गए। तो उस व्यक्ति ने पूछा तुम्हारे दादा की मृत्यु कहाँ हुई थी, उन्हें घर में हुई थी, उन्हें उनके पिता की मृत्यु घर में हुई थी, उनके पिता की मृत्यु घर में हुई थी, बॉर्डर पे भी कोई मरा तुम्हारे घर से, नहीं मरा तो खतरनाक जगह कौन सी है, घर है कि बॉर्डर है, सोचने की बात है। पिता हमें सुरक्षा देंगे। भागवत में कहा गया है फालिपत सूजर, जो साथ छोड़ देने वाले सैनिक है, साथ छोड़ देंगे। ये सैनिक है हमारे इर्द गिर्द, है वो सैनिक माता पिता बच्चों के पति पत्नी के रूप में, लेकिन वो सैनिक हमेशा खड़े नहीं रहेंगे। और अगर खड़े भी रहेंगे तो भी मृत्यु रूपी पाश में बांध कर यमदूत हमें लेके चले जाएंगे, वो लोग देखते रहेंगे। तो सोच की बात है, अभी हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि एक गांव में सर्कस आई, शेर हाथी चीते जोकर कलाबाज नट इत्यादि, सब खेतों में उन्होंने अपना टेंट वेंट लगा दिए। तो रात में उस सर्कस में आग लग गई, तो जो भाग सकता था भाग गया, जो पिंजरे में बंद थे जानवर मर गए। लेकिन लोगों पर हैरानी हुई कि खूंटे से एक हाथी बंधा हुआ था, वो भी चक्के पर गया। बहुत ही ताकतवर हाथी था, वो खूंटा खेत की नरम मिट्टी में गड़ा हुआ था, हल्का सा झटका मारता निकल जाता भाग जाता। लेकिन वो हाथी जल के मर गया, खूंटा नहीं उखाड़ पाया। तो उन्होंने सबसे मिलकर सोचा ये इतनी अद्भुत बात है, इसका कारण तो खोजे, क्या कारण है। तो उन्होंने पता किया कि हाथी कब खरीदा गया था, कहां से आया था। तो पता चला छोटा सा बालक था ये हाथी, बहुत छोटा था जब इसको जंगल से पकड़ के लाए, उसके पैर में जंजीर बांध के खंभे से बांध दिया। आजाद जानवर था, बंधना मंजूर नहीं था उसको, बहुत ताकत लगाई उसको तोड़ने के लिए, पूरा पैर उसका लहू लुहान हो गया, लेकिन जंजीर नहीं टूटी। तो उसके दिमाग में, उस छोटे से हाथी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि जो जंजीर है मेरे पैर की, ये नहीं टूट सकती। तो जल के मर गया, इतना ताकतवर होने पर वो खूंटे को नहीं खींच पाया, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी बचपन। इसी तरह हमारे दिमाग में भी बचपन से बहुत सारी बातें बैठी हुई हैं, बहुत सारी बातें बैठी हुई हैं हमारे दिमाग। नैतिकता के नाम पर हम लोग भगवान से भी दुख हो जाते हैं, हम पिता को परमेश्वर मान लेते हैं, परमेश्वर को पिता नहीं मानते। श्रील प्रभुपाद इनके जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत का सरस्वती ठाकुर, वो कहते थे, आज उनका जन्मदिन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की
जय।
वो कहते थे कृष्ण विमुख अगर नैतिकता है मैं ठोकर मारता, कृष्ण विमुख नैतिकता का पालन करके हमें मिलेगा ही क्या। नर सेवा नारायण सेवा नहीं है, नारायण की सेवा नर सेवा है। भूखों को खाना खिलाने से कुछ नहीं होगा, चार घंटे बाद फिर से भूख लग जाएगी, क्या करोगे? अगर उनका कल्याण करना है तो भगवान कृष्ण को भोग लगाओ, प्रसाद दो उसको। प्रसाद है सर्व दुखाना भाने रस्यो बजायते प्रसन्न चेत साही आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। अगर हमने कृष्ण प्रसाद किसी को दिया, कृष्ण प्रसाद दिया, तो उस कृष्ण प्रसाद से उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते सारे दुखों की हानि हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और अगर हमने उसको भोजन खिला दिया जो भगवान को भोग नहीं लगा हुआ, तो वो जघन्य पाप ही खिला रहे हैं उसको, तो उसको तो हमने पाप खिलाया, उसको तो पाप लगा, क्यों आपने भी खिलाया तो आपको भी उस पाप का भागीदार बनना पड़ा। तो ऐसे नैतिकता का, ऐसी नर सेवा का क्या लाभ कि दाता और प्राप्तकर्ता दोनों ही नरकगामी हो जाए, उससे क्या लाभ? जो नैतिकता है, अगर हम अपने घर वालों की सेवा बहुत ही जिम्मेदारी से करते रहे और भगवान की सेवा नहीं की, तो क्या लाभ होगा? घर वाले जो हमारे हैं, जो हमारे परिजन हैं, भगवान ने हमें दायित्व दिया है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान ने हमें दायित्व दिया है कि हम इनको कृष्ण भक्ति में लगाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं। अगर हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को भगवान की भक्ति में नहीं लगा सकते, तो माता पिता बनने का कोई औचित्य, कोई लाभ, कोई कारण नहीं है। ना गुरु बनो, अगर गुरु ही बन गए और अपने शिष्यों को भगवत धाम नहीं लेके गए, तो ऐसे गुरु के पीछे भागने से कोई लाभ नहीं है। कई लोग हमसे मिलते हैं, हम उनको बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और बोलते हैं हमें तो गुरु ने मंत्र दिया है, हम तो गुरु मंत्र जपते हैं। अरे वो गुरु मंत्र किसी शास्त्र में भी देके रखा है कि नहीं देके रखा है? कि घर में जैसे वो कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री है और बना के कच्ची शराब पिला रहे हैं, विषैली शराब, लोग मर जाते हैं, ऐसे ही घर में गुरु मंत्र घड़ लिए और लोगों में बांट दी है कि लाओ 100 रुपया दो और मंत्र। गुरु से आखिरी बार कब मिले थे पता नहीं, गुरु की शक्ल भी हो सकता है याद नहीं, लेकिन गुरु है। ऐसे गुरु बनाने से ना शिष्य को लाभ है और ना उस गुरु को, गुरु को वित्त का लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, सुकृति नहीं मिलेगी, भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हमने शिष्य बनाए, अगर एक व्यक्ति ने शिष्य बनाया और उस शिष्य की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाया, तो ऐसा गुरु नरकगामी होगा। और जो व्यक्ति ऐसे गुरु का पीछा करता है अंधे की तरह, अंधा यथार्थ है उपनियम, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे भाग रहा है, उरुदाम में बंधा, वो और भी ज्यादा बंध जाता है, और भी ज्यादा इस भौतिक संसार में बंध जाता है। क्यों? क्योंकि मैं गुरु धारण कर रखा है, ये सोच के प्रमाणिक शिक्षा को भी ग्रहण नहीं करता। वो ये सोचता रहता है कि मेरा गुरु ने तो बोला है कि मेरा मंत्र जपो। हम गुरु का सम्मान करते हैं, हम गुरु का सम्मान क्यों करते हैं, क्योंकि गुरु भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय सेवक हैं। हम गुरु का सम्मान इसलिए करते हैं कि वो हमें कृष्ण के चरणों की सेवा में लगाते हैं। अगर गुरु हमें अपनी सेवा में लगाए तुरंत छोड़ देना चाहिए। बलि महाराज जब वामन देव जी ने बलि महाराज को कैद कर लिया, तीन पग जमीन मांगी थी नहीं दे पाया बलि महाराज, तीन पग जमीन मांगी थी। पहले पग में सारी पृथ्वी लोक इत्यादि नाम लिए, दूसरे में पूरा अंतरिक्ष नाम दिया, तीसरा पैर कहां रखें? तो अपना वचन पूरा नहीं कर पाया, इसलिए भगवान वामन देव ने बलि महाराज को रस्सियों से बांध कर कैद कर लिया। और कैद में बलि महाराज बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं। किस पर? वो दुख अपने पर प्रकट नहीं कर रहे, वो दुख प्रकट कर रहे हैं इंद्र पर। बलि महाराज कह रहे हैं कि कितना दुर्भाग्यशाली है इंद्र, स्वयं भगवान चल के उसके द्वार पर आए और भगवत भक्ति मांगने की जगह भगवान से सेवा ले ली, भगवान को बोल दिया कि जाओ जाकर मेरा राज्य लौटा के ले आओ। इतना बढ़िया अवसर मिला था इंद्र को और धिक्कार है उसके गुरु पर भी, और उसके गुरु पर भी धिक्कार है जो इंद्र को भगवान की भक्ति लेने की सलाह नहीं दे पाया। तो ऐसे गुरु का पीछा करने से क्या लाभ जो हमें कांच के टुकड़ों की तरफ ढका है। जब ध्रुव महाराज गए थे, क्षत्रिय थे, सौतेली मां ने सुरुचि अपमान कर दिया, तो बदला लेने के लिए जंगल में चले गए। उनकी मां सुमिति ने बोला कि देखो मैं तो अबला नारी हूं, मैं तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकती, एक व्यक्ति है जो तुम्हारा भला कर सकता है। तो कौन है? भगवान कृष्ण। कहां मिलेंगे? जंगल में। जंगल में चले गए, छोटे से बालक थे 5 वर्ष के। नारद मुनि रास्ते में मिले, उनको नारद मुनि ने दीक्षा दी, मंत्र दिया जपने के लिए भगवान कृष्ण का, और मंत्र जपा, भगवान के अचर विग्रह की उपासना की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या है, तुम अपने पिता से भी श्रेष्ठ राज्य चाहते हो। नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, जब मैं आया था जंगल में तो मेरी इच्छा थी, आपकी भक्ति शुरू की इसी इच्छा के चलते, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ये जो जितने भी भौतिक संसार के सुख हैं, जितने भी भौतिक संसार के सुख हैं, वो सारे कितने ही लंबे समय तक क्यों ना चले, अंत में खत्म हो जाते हैं। चाहे करोड़ों वर्ष का साम्राज्य क्यों ना मिल जाए, वो करोड़ वर्ष भी खत्म हो जाएंगे। तो मुझे ये कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। मुझे समझ में आ गया कि ये जो भौतिक संसार के सुख हैं, ये कांच के टुकड़े हैं। मैं अब ये कांच के टुकड़े नहीं चाहता, आप तो मुझे भक्ति रूपी हीरा दे दीजिए, भक्ति रूपी हीरा प्रदान कीजिए। सो भगवान ने क्या उनको भक्ति दी या राज्य दिया? भगवान ने भक्ति भी दी और राज्य भी दिया, दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। सो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और इस भौतिक संसार से बाहर निकलो। यहीं पे विराम देते हैं, बार बार डिस्टर्बेंस में कथा को आगे चलाना मुश्किल हो जाता है। अगली बार से आप लोग अपने फोन जो है को प्रयास करके साइलेंट पर रखिएगा। हरे कृष्ण। सो कीर्तन करते हैं, कीर्तन में आपका फोन बजेगा तो प्रॉब्लम नहीं। आरती का तैयारी है आपका? हाँ, आरती का तैयारी है। क्वेश्चन आंसर का भी अभी कुछ बात नहीं है ना? पहली बार तो आप लोगों के पास प्रश्न होंगे नहीं, अभी क्या बोले बार बार प्रार्थना करने पर भी फोन अपना साइलेंट नहीं कर पाते, बड़े दुखी। तो चलो कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा Thank you.